हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 पर आज हम बात करने वाले हैं आप ही की सेहत के बारे में, हम बात करने वाले हैं आपकी फिक्र के बारे में और हम बात करने वाले हैं अस्थमा पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हु इज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद। तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी उनका रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में।
थैंक यू
सर। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अस्थमा की जैसे ही नाम आता है, खांसी का नाम आता है, तो हम ये डर जाते हैं कि ये हमारी खांसी कैसी है, क्योंकि अगर मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी होती है, तो ये बड़ा ही कॉमन है कि आपको खांसी होगी, आपको जुकाम होगा, लेकिन कई बार खांसी लंबी भी हो जाती है। तो एक इंसान को कैसे पता लगे कि ये नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड है या फिर ये अस्थमा है?
देखिए, सबसे पहले कफ आपकी बात ठीक है कि मौसम बदलता है तो कफ आती है
जी,
बट आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जुकाम हुआ, नाक रनिंग नोज है, नाक से सिक्रीशन आ रहे हैं, उसके साथ कुछ गला ख़राब है, खांसी आ रही है, आइडियली अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से चेक करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये अस्थमा है तो ये नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है उससे ठीक नहीं होगा। और इसकी जांच प्रॉपर जब डॉक्टर प्रॉपर स्टेथोस्कोप से चेस्ट पे स्टेथ लगा के देखते हैं तभी पता लग सकता है कि ये नॉर्मल गले से कफ आ रही है या चेस्ट में जो अस्थमा वाली कफ है, तभी प्रॉपर ट्रीट किया जाता है।
डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिस है, एटलीस्ट हमारे बात करें भारत की तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि यहाँ हर कोई अपने आप में एक डॉक्टर है। हम जनरली केमिस्ट से ही दवाइयाँ खरीद लेते हैं और अपना इलाज कर लेते हैं, क्योंकि हम सेल्फ मेड डॉक्टर्स हैं। अगर हम डॉक्टर नहीं है तो हमारे परिवार वाले या हमारे रिश्तेदार सब डॉक्टर होते हैं। और जब बात होती है नॉर्मल कॉफ एंड कोल्ड की, यानी खांसी जुकाम की, तो बिलीव मी, मैंने शायद ही किसी को देखा होगा कि कॉफ एंड कोल्ड के लिए कोई किसी फिजिशियन के पास जाता है या किसी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब वही बीमारी एक जटिल रूप ले लेती है तब वो परेशान होकर जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सभी लिसनर्स को?
मैं अपने लिसनर्स को यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे समाज में प्रैक्टिस चल रही है ये रॉन्ग है। एक्चुअली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर चेक करवाइए, एंड देन अकॉर्डिंग टू एडवाइस आपको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली अगर कफ वगैरह है चलो वो तो ठीक हो जाएगा, पर अगर ये अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है या कोई ट्यूबरक्लोसिस जैसी है तो वो तो बढ़ती जाएगी, उसके जितनी बीमारी बढ़ेगी उतने ही रिजल्ट खराब मिलेंगे उसके।
जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। और हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी मासी ने फला दवा ली थी और वो ठीक हो गई थी, या हमारी बहन को यही प्रॉब्लम हुई थी, उसने ये दवाई ली थी और वो ठीक हो गई थी, तो हम ये मानकर चलते हैं कि शायद हम भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन हर किसी का शरीर बिल्कुल अलग है और हर किसी की बीमारी बिल्कुल अलग है। और अगर डॉक्टर्स ने इतनी पढ़ाई की है, इतनी रिसर्च के बाद उन्होंने कोई मेहनत की है, तो ऑब्वियसली हर दवाई और हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं और सिर्फ केमिस्ट से ही दवाई लेकर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास ऐसी कोई भी क्वेरी है तो झटपट से आप हमें बता सकते हैं 8010781078 पर। लेकिन फिलहाल मैं इनसे जो पूछने वाली हूँ वो है एक सबसे अहम सवाल, हमें पता कैसे लगे कि ये अस्थमा है, क्या इसके कोई खास सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब?
हाँ, मोस्टली अस्थमा की जो कफ रहती है ये ड्राई कफ, सूखी खांसी रहती है
जी।
एंड आपको इसके साथ में एक सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में टाइटनेस, कि चेस्ट अंदर से जैसे कोई घोट रहा हो आपका, इस टाइप की फीलिंग आती है। और मोस्टली ये कफ जो होती है इवनिंग में, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, इवनिंग में, नाइट में, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होती है
जी।
तो उसके साथ में कई बार चेस्ट में से एक अजीब सीटी की सी आवाज़, या जिसे हम अपनी लैंग्वेज में व्हीजिंग कहते हैं, ये भी आती है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी लगता है कि खांसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएट चेकअप कराएं और ट्रीटमेंट लें उसका।
जी हाँ, खांसी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आपने कई बार ये सुना होगा कि 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी यानी टीबी भी हो सकती है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान देने की कोशिश की है कि सिर्फ खांसी ही अस्थमा का कारण बन सकती है? एक लंबे समय तक अगर आप खांसते रहते हैं तो आप अपने लंग्स को भी वीक करते रहते हैं, इसलिए खांसी जैसी चीज़ या जुकाम जैसी चीज़ को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जटिल रूप भी ले सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब कभी हम अस्थमा की बात करते हैं तो हमें एकदम से डर लगने लगता है। आधे लोग तो इसलिए नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास कि वो ये डरते हैं कि कहीं उन्हें अस्थमा ना हो जाए, लेकिन अस्थमा इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको उससे डरने की जरूरत हो। बस सिर्फ जरूरत है एक प्रॉपर इलाज की, जो आपको मिल सकता है एक अच्छे डॉक्टर के पास। जब हम बात कर रहे हैं अस्थमा की, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है या फिर इसका प्रॉपरली इलाज हो सकता है?
देखिए, मोस्टली जो अस्थमा है ये एक्चुअली लाइफ लॉन्ग डिजीज़ की तरह ही होता है
जी।
इसका परमानेंट क्योर नहीं कह सकते कि है, हाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से, कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल जिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि हाँ हम आपको ये दवाई दे देते हैं और ये आपके बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो अस्थमा होता है ये एलर्जिक होता है, किसी न किसी चीज़ से जब भी वो एलर्जन आपके एक्सपोजर में आएगा तो फिर एलर्जी बनेगी बॉडी में और अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाएगा और आपकी कॉफ शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ट्रीटमेंट लेना है और आप ठीक हो जाएंगे।
जी हाँ डॉक्टर साहब, अस्थमा से रिलेटेड एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी गई है कि लोग ये मानकर चलते हैं कि अस्थमा में अगर आप इनहेलर्स ले रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की दवाई ले रहे हैं ये सिर्फ टेम्परेरी इलाज है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा है कि ये हम टेम्परेरीली किसी चीज़ को सिर्फ ढकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये प्रॉपरली उसका इलाज भी है?
नहीं, यही उसका प्रॉपर इलाज होता है। अब किसी पेशेंट को कितने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट देना है ये उनके सिम्टम्स और नंबर ऑफ अस्थमेटिक अटैक पर डिपेंड करता है
जी।
अगर किसी में सिर्फ चेंजिंग वेदर में ही अस्थमा हो रहा है
जी।
या कुछ गला ख़राब हुआ और उसके बाद अस्थमा प्रेसिपिटेट हो गया है तो उसमें शॉर्ट टाइम के लिए मेडिसिन इनहेलर्स दिए जाते हैं 2-3-4 हफ्ते के लिए
जी।
लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है या एक महीने में 4-6 से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं देन उनको फिर रेगुलर जो इनहेलर्स वगैरह हैं ये प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये सिम्टम पर डिपेंड करता है भी कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि ये एक्चुअली आपकी बॉडी को देखकर और साथ के साथ सिम्टम्स पर पता लगता है कि आपको कितना लंबा इलाज चाहिए या फिर कितने लंबे इलाज की आपको ज़रूरत है। आज के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं और हम एक हेक्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं जहां पर हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम है सिवाय अपने आप को देखने के यानी अपनी किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज के। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आप सुन रहे हैं खास प्रोग्राम। जी हाँ, अस्थमा से रिलेटेड ये हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल हु इज अ कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद। हम अब डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें ये बताइए जिस प्रकार बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती हैं उसमें डायबिटीज भी है, उसमें हार्ट की प्रॉब्लम भी है, क्या हम अस्थमा को लाइफस्टाइल डिजीज कह सकते हैं?
अस्थमा ये है कि लाइफस्टाइल से अफेक्टेड जरूर होता है
जी।
लाइफस्टाइल से प्रेसिपिटेट होता है, मतलब कि इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं लेकिन लाइफस्टाइल से ये बनता नहीं है
जी।
मोस्टली ये देखा गया है कि जिनको अस्थमा होता है इनमें कुछ न कुछ जेनेटिक रोल हो रहता है
जी।
जिनके कि पीछे माँ बाप में या उनके पीछे किसी में अस्थमेटिक टेंडेंसी एलर्जिक टेंडेंसी होती है, उसके बाद जैसे ही एलर्जन का एक्सपोजर होता है आपका अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। लाइफस्टाइल का इसमें डेफिनेटली रोल होता है, जैसे कि सडन चेंज ऑफ वेदर, आप अंदर एसी कमरे में हैं एकदम बाहर धूप में गए, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर हम ऑलवेज क्लोज सिस्टम में रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर एयर फिल्टरिंग वगैरह नहीं है तो अस्थमा का अटैक उससे प्रेसिपिटेट हो सकता है, या आप अगर क्लोज सिस्टम में हैं जहाँ पे कि कुछ अदर लोगों का गला ख़राब है, वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन सोर्स है अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट करने के लिए। अगर आप वहाँ बगल में बैठे हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ अस्थमा उससे हो सकता है। बहुत ज़्यादा सर्दी में से ठंडा पानी पिया, गला ख़राब हुआ, उससे अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो लाइफस्टाइल से इसके अटैक आ सकते हैं पर अस्थमा उससे बनता नहीं है।
बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने कि लाइफस्टाइल से ऑफ कोर्स हमारी जैसे लाइफस्टाइल बदल रही है तो उससे बहुत सारी बीमारियों को हम वाकई इनविटेशन दे रहे हैं, हम उन्हें एक आमंत्रण दे रहे हैं। उन्हीं में से एक ऑफ कोर्स अस्थमा है, लेकिन इसका सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल से रिलेशन है, लेकिन हमारी हैबिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि क्या हमारी फिजिकल एक्सरसाइज से अस्थमा का कोई लेना देना है? क्योंकि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो ना के बराबर हो जाती है। उनका ये मानना होता है कि अगर हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, स्विमिंग करेंगे, चलेंगे, तो हमें अस्थमा का अटैक आ सकता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग होती है कि उनकी सांस फूलने लगती है चलने से। तो इसका क्या लेना देना है?
इसका लेना देना ये रहता है कि एक अस्थमा का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा
जी।
जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जब तेजी से सांस जब चलती है तो वो जब सांस की नलियों से होकर गुजरती है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन बन जाता है और अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, लेकिन ऐसा सब में नहीं होता है
जी।
जो लोग जिस चीज़ से डरते हैं उसका रीज़न ये होता है कि वो अपने अस्थमा के माइल्ड सिम्टम को अवॉइड करते रहते हैं, तो जब वो एट रेस्ट होते हैं तब भी हल्की उनको कफ या स्पाजम या सांस में दिक्कत रहती है, उसको तो अवॉइड करते हैं
जी।
जैसे ही वो कुछ भारी काम करते हैं जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइज हो, जैसे ही सांस की आपकी गति तेज होती है तो उनको वो शॉर्टनेस और सांस फूलना लगने लगता है और वो सोचते हैं कि अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो गया है, पर ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे लोगों को ये रहना चाहिए कि अगर आप जब भी कोई भारी एक्टिविटी करें, जैसे आपके पास अगर आप इनहेलर इस्तेमाल करते हैं उसके दो पफ लेके फिर आप शुरू करें, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
अस्थमा से रिलेटेड एक बहुत कॉमन सी चीज़ है और वो है इसकी दवाइयाँ, यानी इसका मेडिकेशन। डॉक्टर साहब, अस्थमा की जनरली मुझे जहाँ तक पता है एज अ लेमैन इनहेलर्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं या फिर नेबुलाइजेशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनमें कई बार स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल होता है और जिससे साइड इफेक्ट्स होने की परेशानी होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या यही एक परमानेंट इलाज है अस्थमा का?
देखिए, इसके कई तरह के इलाज होते हैं
जी।
इसमें इनहेलर्स के साथ टैबलेट्स, यू आर राइट कि इनका इस्तेमाल होता है
जी।
इनहेलर्स दो तरह के होते हैं, एक जब एकदम अस्थमा का अटैक होता है उस वक्त आइडियली नेबुलाइज करवाया जाता है
जी।
नेबुलाइजेशन और इनहेलर में मेडिसिन सेम होती है
जी।
लेकिन जब सांस फूल रहा होता है तो आदमी इनहेलर से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो नेबुलाइज करवाया जाता है
जी।
अगर वो थोड़ा सा स्टेबल होता है तो उसको इनहेलर्स दिए जाते हैं। इनहेलर्स में भी दो तरह की मेडिसिन होती है, जो एकदम इमीडिएट इफेक्ट करती है और जो दूसरी स्लो एक्ट करती है
जी।
तो शुरू में इमीडिएट इफेक्ट वाली मेडिसिन दी जाती है, जब और स्टेबल हो जाता है तो 3-4 हफ्ते के लिए जो धीरे धीरे स्लोली स्लोली 24 आवर वर्क करती है वो मेडिसिन, वो इनहेलर्स दिए जाते हैं
जी।
साथ में जो टैबलेट्स दी जाती हैं वो इस चीज़ की टैबलेट होती है कि अस्थमा का अटैक ना बने, उसको प्रिवेंट करती है, बॉडी से डिजीज़ की जो बेसिक पैथोलॉजी है उसको ख़त्म करती है वो
जी।
ये तो हुआ टैबलेट्स और इनहेलर्स का। अब थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, स्टीरॉइड्स। यस, आपकी बात ठीक है, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, लेकिन जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत होती है तो उस वक्त स्टीरॉइड का इस्तेमाल उसके लिए लाइफ सेविंग होता है। तो उस वक्त ये स्टीरॉइड जो है शॉर्ट टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद इनको 5-7-10 दिनों में धीरे धीरे डोज कम करके बंद कर दिया जाता है। जो नॉर्मली आप डरते हैं स्टीरॉइड के साइड इफ़ेक्ट, वो अगर इनको बहुत लंबे मतलब महीनों सालों तक कंटिन्यूस लिया जाए तब उनका साइड इफ़ेक्ट आता है, 10-15-20 दिनों में या 2-3 हफ्ते में उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है
जी हाँ। तो अगर आप अब तक ये डर रहे थे कि भाई अस्थमा में हम इनहेलर्स ले रहे हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन दवाइयों को ले सकते हैं। और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि जब एक डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो वो आपके शरीर को और आपकी बीमारी को अच्छे से पहचानते हैं, तो वो आपके लिए कोई अच्छा ही मेडिकेशन लेकर आए होंगे। फिलहाल अगर इसके साथ साथ आपके पास कोई और सवाल भी है जो मैंने अभी तक डॉक्टर साहब से नहीं पूछा है तो आप ऑफकोर्स पूछ सकते हैं। जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, हमें SMS करके बताइए 8010781078 पर। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अस्थमा से रिलेटेड तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन एक चीज जो अक्सर मैंने लोगों को देखा है, जब किसी को अस्थमा होता है तो वो अपनी बीमारी को बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं, क्या अगर इस बीमारी को बहुत लाइटली लिया जाए तो इसके कोई फैटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं?
जी हाँ, अगर आप अस्थमा का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें और अस्थमा का अगर सीवियर अटैक प्रेसिपिटेट हो जाए तो इवन इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, एट स्पॉट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अस्थमा है क्या, अस्थमा में जो हमारी सांस की जो नलियाँ होती हैं उनमें सूजन आ जाती है और वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं
जी।
अब आप सोचिए, अगर आपकी सांस की नली आधी रात को एकदम अटैक हुआ और वो बंद हो गई तो सांस कहाँ से आएगा? या तो आपको मशीन से दिया जाए, यानी कि हॉस्पिटल में लेके आपको वेंटिलेटर पे लिया जाए
जी।
अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी फैटल। तो अस्थमा का प्रॉपर इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा और सीवियर इलाज नहीं है। जस्ट लाइट कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो एक इनहेलर दिन में एक बार लेते हैं या एक टैबलेट दिन में एक बार लेते हैं, और वो भी 3-4 हफ्ते के लिए उन्हीं दिनों में जब उनको अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। क्योंकि मोस्टली ये चेंजिंग वेदर के साथ, डस्टिंग वगैरह में या दिवाली के टाइम धूल मिट्टी में या बारिशों के मौसम में तब ये आता है। तो थोड़े टाइम के लिए उस वक्त मेडिसिन लें और अटैक से फ्री रहें, उसके बाद इसको धीरे धीरे टैपर करके बंद कर देते हैं
जी। अपनी बीमारी को कभी भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब की गई है या आपको कोई भी इनहेलर प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसे लें ज़रूर। ये ना सोचे कि चलिए आज तो हमने नहीं लिया, हम बच गए, हमने कम दवाई ली है। ये जो एक धारणा हमारी है ये बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं फूड की, यानी खाने की। हमारी ज़िंदगी खाने पर चलती है और खाने से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। हम कुछ सी तरह का खाना खाते हैं जिससे बीमारियों को हम आमंत्रण देते हैं, और वहीं पर किसी तरह का खाना खाने से हम बीमारियों से दूर भी रह सकते हैं। अस्थमा का खाने से क्या रिलेशन है? अक्सर मैंने सुना है, रादर ये कहना चाहिए, घर के जितने बुजुर्ग होते हैं जैसे ही आपको खांसी जुकाम होता है शुरू हो जाते हैं, आप गर्म पानी पीजिए, आप चाय पीजिए, आप काढ़ा पीजिए, आप अदरक डालिए, ये सारी चीज़ें हैं। और जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद मुझे लगता है वो तो हैबिचुअल हो जाते होंगे इन बातों को सुन के, तो क्या कहना चाहेंगे, खाने का कितना लेना देना है अस्थमा से?
देखिए, खाने का लेना देना एज सच डायरेक्टली अस्थमा से नहीं होता है
जी।
हाँ, ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जिक हैं या किसी फूड के कोई एक कंपोनेंट से आप एलर्जिक हैं, तो जब भी वो आप लेंगे एलर्जी बनेगी और अस्थमा हो सकता है। लेकिन कोई पर्टिकुलर फूड, जैसे कि घर में कहा जाता है चावल ना लीजिए, राजमा ना लीजिए, ठंडी खट्टी चीज़ मत लीजिए, इनसे डायरेक्टली अस्थमा का कोई रिलेशन नहीं है। ठंडे का ज़रूर रिलेशन रहता है, क्योंकि जो ठंडी जो चीज़ होती है उसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। ड्राई होने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और सूजन आने की संभावना रहती है। इसलिए हम इवन अस्थमा वाले पेशेंट को स्टीम लेने को कहते हैं
जी,
क्योंकि इट शुड बी, ये थोड़ा वार्म्थ मतलब गर्म और जो मॉइस्ट रहना चाहिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो अस्थमा का अटैक बच जाता है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी गर्म चीज़ लें, हॉट लिक्विड्स लें, जिससे कि अस्थमा के अटैक से आप बचे रहें। ठंडी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बाकी ये जो अचार खट्टी चीज़ें और इनका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, अंटिल नेस आप उसे एलर्जिक ना हो।
तो आप अपनी एलर्जी को पहचानें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको दही, अचार, खट्टा, नींबू, इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इन्हें खा सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल हमने आज इनसे जानी अस्थमा से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, लेकिन अब तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर सुमित का कि वो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी। जाने से पहले डॉक्टर साहब, हमारे सभी लिसनर्स के लिए आपकी ओर से एक संदेश।
मैं अपने सभी लिसनर्स को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपके या आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी अगर अस्थमाटिक टेंडेंसी है या कभी अस्थमा का अटैक हुआ है, तो इसका एक प्रॉपर डायग्नोस के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमें अस्थमा है और इन इन टाइम में या इन इन चीज़ों से ये अस्थमा बनता है, और आपके डॉक्टर को प्रॉपर दिखा के एक प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन आपके साथ होना चाहिए। मोस्टली हम ऐसे कंडीशन में उनको एक इनहेलर प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि आप इसको हमेशा साथ में रखें, कि जब भी आपको लगे कि ऐसी शुरुआत हो रही है, जस्ट उसके दो पफ ले लें, ताकि वो अटैक सीवियर ना हो और आप अपने डॉक्टर के पास ऑन टाइम और बिल्कुल स्वस्थ पहुँच सकें।
जी हाँ, तो डॉक्टर साहब ने ये तो बताया हमें कि हम किस प्रकार अस्थमा अगर हमें है, फिर भी अगर हम उसकी दवाई या फिर उसका इनहेलर हमेशा अपने पास रखते हैं, तो हम ना सिर्फ अपने एक बड़े अटैक को बचा सकते हैं, लेकिन अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसी बात पर सर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप अपना ख्याल रखेंगे। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड फील गुड, फील लाइफ।